पेज नंबर 23। घराना शब्द का अर्थ और परिभाषा। विभिन्न शब्दकोशों में घराने का अर्थ घराना, कुल, खानदान, वंश, विशेषतः प्रतिष्ठित और संपन्न। घराना खानदान वंश कुल, जैसे वह अच्छे घराने का आदमी है, उस घराने की गायकी प्रसिद्ध है। घराने की शब्दगत अर्थ को समझ लेने के पश्चात अब हम घराने से संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं पर विचार करेंगे। घराने से मतलब किसी विशिष्ट गुरु परंपरा में रहा है। डॉक्टर नारायण मेनन के अनुसार परंपरा का अर्थ है एक से दूसरे तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी चीज को पहुंचाना। वक्तव्य, विश्वास, नियम, रीति, रिवाज आदि को व्यवहार में या लिखित रूप में या बोलचाल की भाषा में इस तरह हस्तांतरित करना अंग्रेजी भाषा में ट्रेडिशन या परंपरा कहा जाता है, और अधिक व्यापक अंगों में परंपरा ऐसे रिवाज को कहा तथा लिखा जाता है जो काफी अरसे तक अपने स्वीकृति बनाए रखे। श्रीधर अनंत आप्टे के शब्दों में परंपरा के अर्थ में यह लिखा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का विद्यादान लेना, दूसरे से तीसरे का, फिर तीसरे से चौथे का, इस प्रकार ज्ञानदान बढ़ते बढ़ते विद्या की धारा अखंड रूप से प्रवाहित होती है। राघव और मेनन ने घराना परंपरा की परिभाषा इस प्रकार दी है। गुरु शिष्य परंपरा का अन्य नाम घराना है, जो कि एक प्राणभूत प्रक्रिया रही है तथा जिसने स्थान विशेष में किसी एक व्यक्ति समूह में कहीं कहीं किसी परिवार में सदस्यों में प्रतिभा के न्यूनतम स्तर तथा उसके भीतर से उभारने वाले या बाह्य प्रयास को बनाए रखता है। पंडित रविशंकर के शब्दों में अक्षरशः घराना परंपरा गुरु द्वारा शिष्य के प्रति दी शिक्षा संबंधी निर्देशों द्वारा निर्मित संगीतमयी सांस्कृतिक यानी संस्कृति का केंद्र अथवा स्कूल रहा है। संगीत अभिव्यक्ति में विभिन्न घरानों की अलग अलग विशेषताएं हैं। घराना पद्धति का उद्भव तथा विकास। घराने के अर्थ को भली भांति समझ लेने के उपरांत अब इसके उद्भव तथा विकास पर विचार किया जाएगा। घराने जैसी अनूठी परंपरा भारतीय संगीत में कैसे आरंभ हुई, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सर्वमान्य तथ्य है कि सामवेद में गायन की लगभग 1080 शाखाएं व उपशाखाएं प्रचलित थीं, किंतु बाद के समय में 15 शाखाएं ही प्रचलित रह पाईं और अंततः केवल 3 शाखाओं, कौथुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय का प्रचलन शेष रह गया। इन्हें ही एक प्रकार का वर्ग कहा जा सकता है। कारण हर एक शख्स और शाखा के गायक अपनी शाखा के निर्धारित नियमों के अनुरूप गाना गाते थे। इस प्रकार चाहे उन्हें पद्धति, शैली या गायन की शाखाएं कहें, पर ये लगते हैं एक प्रकार से घराने या वर्ग के समकक्ष ही। वेदों के उपरांत प्राचीन प्रबंध गान की जातियों या गीतियों का प्रचलन हुआ, किंतु उनमें भी विशिष्ट पद्धतियों के गायक विशिष्ट वर्ग या समुदाय ही थे। उसके पश्चात प्रबंध गान की अपनी गीतियाँ आईं, जिन्हें शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी कहा जाता था। प्रबंध गान से ध्रुपद व ध्रुवपद का आविर्भाव हुआ, यानी उद्गम हुआ। ध्रुवपद भी पृथक पृथक ढंग से गाया जाने लगा और उसके प्रमुख चार भेद हो गए: खंडहार वाणी, नौहार वाणी, गौहार वाणी, गौड़ीय वाणी और डागुर वाणी। इन वाणियों यानी वाणियों के प्रचलन के समय प्रत्येक वाणी की एक विशिष्ट गुरु शिष्य परंपरा बन गई। अकबर दरबार के संगीतज्ञ तानसेन गौहर वाणी के, ब्रजचंद्र यानी चांद खां डागर वाणी के, राजा सम्मोहन सिंह खंडार वाणी के तथा श्रीचंद सूरज खां नौहरी खां नौहरी के प्रतिनिधि थे, क्योंकि इन वाणियों का विकास ग्वालियर, डांग, खंडार, नौहार आदि स्थानों पर हुआ। अतः इनमें भाषा या बोली की भिन्नता के साथ साथ शैली की भी भिन्नता का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तानसेन जहां एक ओर गोहारी वाणी के प्रवर्तक थे, वहां दूसरी ओर बीनकारों में सेनिया घराने के आदि पुरुष। तानसेन के पुत्र व पुत्री के वंशजों में ध्रुपद व बीनकारों की एक लंबी परंपरा ने घराने को जन्म दिया। गान या वादन की शिक्षा वंश या परिवार के व्यक्तियों में ही सीमित होती चली गई। जब ध्रुपद के पश्चात ख्याल आया, तब वंश परंपरा में ही शिक्षण पद्धति को ख्याल की गायकों ने भी अपनाया। पेज नंबर 25। कलात्मक शैलीगत विशेषताओं की शिक्षा घर के व्यक्तियों तक सीमित रहने के कारण ये घराने कहे जाने लगे। यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे संगीत में घराने से मिलती जुलती गुरु शिष्य परंपरा वैदिक काल से ही आरंभ हो गई थी। संस्कृत में घराने से मिलती जुलती परंपरा को संप्रदाय कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में भी घराने के स्थान पर संप्रदाय शब्द का ही प्रयोग होता है। घराना या संप्रदाय गुरु तथा शिष्य के संयोग से बनता है। यह गुरु शिष्य परंपरा शास्त्र तथा कला दोनों के लिए आवश्यक मानी गई है। संगीत कला के संबंध में योग्यता की परख रसिकों के सामने सफल प्रदर्शन में है। संगीत शास्त्र में योग्यता की कसौटी विद्वानों के परितोष में है। शास्त्र तथा कला के सूक्ष्म अंगों का ग्रहण तब तक संभव नहीं जब तक योग्य आचार्य से शिक्षा न ली जाए। विद्या वही सफल होती है जो सही रूप से सीखी जाती है। विद्या या कला की सफलता में जितना योगदान योग्य शिष्य का है, उतना ही योगदान योग्य आचार्य का भी है। भरताचार्य ने आचार्य के अनेक गुणों में एक गुण शिष्य निष्पादन बताया है। अच्छे शिष्य ही गुरु परंपरा को वास्तविक रूप में सुरक्षित रखने में समर्थ होते थे, और ऐसा शिष्य को तैयार करने की क्षमता अच्छे आचार्य की अपेक्षा रखती है। विद्यादान करने वाले गुरु और प्रतिभाशाली शिष्य के होने पर ही संप्रदाय या घराने का जन्म होता है। घराना रीति या शैली का भी दूसरा नाम है। किसी अधिकारी गुरु में कला प्रदर्शन के अंतर्गत कोई विशिष्ट गुण हुआ करते थे। कला अनंत और अपार है, सौंदर्य इसकी आत्मा है। इस सौंदर्य के अनेक पहलू होते हैं, इनमें से किसी एक पहलू पर किसी घराने का अधिकार हो जाता है। कोई बड़ा कलाकार इसी अंग को ऐसे अधिकार में कर लेता है कि अन्य अंगों की अपेक्षा वही उसकी कला में चमकता रहता है कि शिष्य इसी की प्रतिमूर्ति बने। श्रद्धालु तथा ईमानदार शिष्य अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाता है तथा शाखा प्राख्याओं में उस विद्या का विस्तार करता है। घराने की किसी वंशज या शिष्य का संगीत सुनते ही शिष्य को आभास हो जाता है कि आमुक उस्ताद का संगीत आज फिर सुना या सुन सका हूँ। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि घराना एक विशिष्ट गायन शैली, वादन शैली या नृत्य शैली का सूचक होता है, यह शैली या रीति जिस कलाकार के द्वारा प्रवर्तित होती है वे ही इसके संस्थापक माने जाते हैं और उन्हीं के नाम से अथवा निवास स्थान के घराने का नामकरण होता है। घराने का सूत्रपात तब होता है जब घराने की शैली में कोई विलक्षणता हो या कोई अनोखी बात हो। शैली का अनोखापन घराने का विशिष्ट लक्षण होता है। घराना स्थिर तब होता है जब शैली का अनुसरण करने वाला शिष्य समुदाय हो। पेज नंबर 26। घराना तब तक सुरक्षित रहता है जब तक घराने की रीति नीति के साथ ईमानदारी की भावना शिष्य के मन में रहती है। यदि किसी प्रतिभाशाली कलाकार की शैली अभूतपूर्व हो परंतु वह उसी तक सीमित हो तो उसे किसी घराने का प्रवर्तक नहीं माना जा सकता। घराने की सुरक्षित रहने में अनुकरण की प्रवृत्ति बड़े महत्व की होती है। जहां अनुकरण के स्थान पर स्वतंत्र प्रतिभा या कल्पना का उपयोग किया जाता है वहीं घराने का अंत हो जाता है। घराना और वैयक्तिकता दो परस्पर विरोधी कल्पनाएं हैं। घराने में वैयक्तिकता केवल मूल संस्थापक में ही हो सकती है, शागिर्दों में नहीं। घराना शुरू होने के लिए कलाकार की कला में वैयक्तिकता या निजीपन होना जरूरी है, परंतु घराना सुरक्षित रूप से चलने के लिए शिष्यों की वैयक्तिकता बाधक हो सकती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि घराने का अर्थ किसी विशिष्ट शैली या संप्रदाय से है। संगीत विद्या गुरुमुख से सीखी जाती रही है। एक गुरु और उसका शिष्य, इन्हीं के बीच संगीत की खास तालीम दी जाती रही है। आज संगीत का जो सामूहिक तथा बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है वह 20वीं शताब्दी की देन है। इसके पहले यह प्रणाली नहीं थी। गुरु शिष्य की को सीना बसीना तालीम देता था और शिष्य भी बड़े श्रद्धा से कला की खूबियों को बटोरता रहता था। उस्ताद की सारी विशेषताएं शागिर्द के कंठ अथवा हाथ में आ जाती थी और वह ज्ञान जरूरी भी माना जाता था। उस्ताद का यह प्रश्न होता था कि शागिर्द उसकी हूबहू तस्वीर बने। इसी लिहाज से तालीम पूरी होने तक शागिर्द को किसी दूसरे घराने का संगीत सुनने की इजाज़त तक नहीं मिलती थी। उस्ताद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका पुत्र वंशज या शागिर्द किसी दूसरे की गायकी गाए। वस्तुतः घराने की नींव तो राजपूत काल से ही पड़ चुकी थी, परंतु ख्याल शैली के उत्कर्ष काल 18वीं शताब्दी में ही घराने की विशेषतः प्रगति हुई, उसका प्रचार हुआ। घरानों की परंपरा संगीत की शिक्षा का अविभाज्य अंग है। वर्षों तक हमारे संगीत का अध्ययन अध्यापन के अगुआ ये घराने ही रहे हैं। प्रत्येक घराने की गुरु शिष्य परंपरा पर दृष्टिपात करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें भी प्राचीन काल में प्रचलित गुरु शिष्य परंपरा का ही यथावत पालन किया गया है। सराहनीय बात है कि मध्यकाल में प्राचीन काल तक के भारतीय संस्कृति के अनेक पक्षों का तो ह्रास हो गया, पर शिक्षण प्रणाली का यह अंग गुरु शिष्य का पिता पुत्र तुल्य संबंध लगातार ज्यों का त्यों बना रहा। आगरा घराने के विद्वान गायक श्री कुमार मुखर्जी ने अपनी निबंध सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक में लिखा है, जिसे उन्होंने संगीत रिसर्च अकादमी कलकत्ता के वर्ष 1980 में परिसंवाद में पढ़ा था। पृष्ठ संख्या 3 पर लिखा है उन्होंने, द गिल्ड सिस्टम अ प्रोडक्ट ऑफ प्रो इंडस्ट्रियल कल्चरल इन इंडिया एंड यूरोप वॉज बॉर्न आउट ऑफ इकोनॉमिक रीजन्स लाइक एनी अदर क्राफ्ट और कॉलेज इंडस्ट्री वेयर सीक्रेसी ऑफ द सिस्टम वॉज द की नोट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज कंप्लीटली Loyalty was implied and ensured through the Gandabandhan ceremony, musical training, that is the secrets of swara sadhana, bandish compositions and the unfolding of ragas were imparted orally and the paper and ink were viewed with great suspicion. Arthat, औद्योगिक संस्कृति की देन घराना प्रणाली भारत एवं यूरोप में किसी भी दस्तकारी या कुटीर उद्योग की भांति आर्थिक कारणों से जन्मी थी, जिसमें प्रणाली की गोपनीयता ज्ञान परंपरा का मूलाधार था। गंडाबंधन संस्कार द्वारा पूर्ण समर्पण निश्चित किया जाता था। संगीत शिक्षण, स्वर साधना के रहस्य, बंदिश तथा राग विस्तार मौखिक रूप से ही सिखाए जाते थे तथा कागज कलम को बड़े संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। घराने में 3 प्रकार के शिष्य थे, आम यानी सामान्य, खास यानी विशिष्ट और खास उलखास वर्ग। पहले वर्ग के अंतर्गत वे शिष्य आते थे जो उस्तादों को सुनकर ही अधिकांश शिक्षा ग्रहण करते थे। दूसरे वर्ग में उन शिष्यों को की गणना होती थी जिनके विषय में जब गुरु को यह भरोसा हो जाता था कि वे उनकी शैली को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर गए हैं, तब गुरु इस प्रकार के शिष्यों को समय समय पर खास तालीम भी दिया करते थे। इसके अतिरिक्त उन शिष्यों को प्रायः अपने गुरु के साथ संगीत प्रदान करने का अवसर मिल जाता था, जिसका परिणाम यह होता था कि वे शिष्य व्यक्तिगत शिक्षा के साथ साथ गाने बजाने की व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। तीसरे वर्ग में केवल गुरुओं के वंशज ही आते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे शिष्यों को भी सम्मिलित किया जाता था जो अपनी गुरु भक्ति, सेवा और व्यक्तिगत प्रगति एवं प्रतिभा के बल पर गुरु कृपा के अधिकारी सिद्ध हो जाते थे। इन्हीं के द्वारा घराने की मान मर्यादा सुरक्षित रहा करती थी। इस प्रकार के घराने की परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का अपना विशिष्ट स्थान है। ये परंपराएं जिसमें योग्य शिष्य बनते रहते थे बराबर चलती रहीं, पर जिनमें कुशल शिष्य नहीं बन सके वे परंपराएं क्षीण होती चली गईं या बिल्कुल ही नष्ट हो गईं। कई घराने ऐसे भी थे जिनमें अच्छे गायक वादक तो उत्पन्न हुए किंतु उन्होंने शिष्यों को उदारतापूर्वक विद्यादान नहीं दिया। संकुचित मनोवृत्ति, समयाभाव अथवा योग्य शिक्षा शिष्य की अनुपलब्धि के कारण ऐसे कलाकारों की परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। कभी कभी घराने की शैली पुरानी या अरुचिकर होने के कारण भी ऐसा हो गया। पेज नंबर 28। घराने के रूप में परंपरागत रूप से प्रचलित संगीत का स्वरूप तथा विशिष्ट लक्षण जीवित रखने एवं शास्त्रीय संगीत की धारा को अनवरत प्रवाहित करने में तथा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में घरानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संगीतज्ञों की लगन, परिश्रम, सेवा भाव, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव, संगीत के प्रति आस्था आदि के कारण ही प्रत्येक घराने के शिष्यों के रूप में गायक की एक शैली विशेष रूप से जीवित रही है और प्राचीन संगीत के क्रियात्मक स्वरूप का कुछ सीमा तक संरक्षण हुआ। घराना परंपरा में शिक्षण अत्यंत गहन और स्वाभाविक होता था। इसी कारण इसमें शिक्षित शिष्य भी कुशल कलाकार बनकर निकलते थे। उन्हें गुरु की समक्ष घंटों बैठकर सीखने का मौका मिलता था और इस प्रकार उनकी कमियां भी साथ साथ दूर होती रहती थीं। इस परंपरा में गंडाबंधन समारोह के बाद प्रथम पाठ स्वर साधना ही प्रारंभ होता था, जिसमें सुर का भरना, आवाज लगाने का ढंग, आवाज का उतार चढ़ाव, स्वर प्रयोग आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद राग ज्ञान, राग विस्तार, लयकारी की विविध प्रयोग, आलाप तान, बोल तान आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। एक ही राग को पूरे तौर पर सीखने में वर्षों लग जाते थे। घरानेदार गुरुओं का दृढ़ विश्वास था कि एक ही राग के सीखने से दूसरे राग स्वतः ही आ जाते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस प्रकार इस पद्धति में शिष्य की कंठ ध्वनि का संस्कारित करने अथवा शास्त्रीय संगीत के अनुकूल चमकदार या प्रभावशाली बनाने में गुरु शिष्य दोनों का ही बहुत समय गुजर जाता था, पर इससे साधना पक्ष अवश्य ही सुदृढ़ हो जाता था। घरानों के द्वारा संगीत की समृद्धि तो हुई, पर उसे थोड़े से व्यक्तियों में सीमित कर उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। घरानों में संगीत शिक्षा अधिकांशतः गुरु या उस्ताद के वंशजों को ही दी जाती थी। बाहर के व्यक्तियों को शिष्यत्व प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी। प्रत्येक घराने के गुरु या उनके शिष्य प्रशिष्य अपने घराने की विद्या को गुप्त रखते थे और प्रायः अपनी पूरी विद्या को शिष्यों को नहीं देते थे। उन्हें हर समय भय रहता था कि कहीं कोई शिष्य उनसे अधिक अच्छा कलाकार न बन जाए। परिणामतः उनकी विद्या का उन्हीं के साथ अंत हो जाता था। प्रत्येक घराने का दूसरे घराने की अपेक्षा अपने आप को सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ मानना पारस्परिक वैमनस्य का कारण बन जाता था। प्रायः शिक्षा गुरुओं की मनःस्थिति के अनुसार ही दी जाती थी। शिक्षा प्रदान करने की भी कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। सभी कुछ गुरु पर निर्भर करता था। गुरु की शैली के अंधानुकरण के द्वारा गुरु में निहित कुछ शारीरिक दोष या कंठ ध्वनि के दोष शिष्यों के अंदर स्वभावतः ही आ जाते थे। यही नहीं, शिष्य को अपनी अपनी व्यक्तिगत कल्पना या रुचि के अनुसार राग में स्वतंत्र सांगीतिक प्रतिभा दिखलाने का भी अवसर नहीं मिल पाता था। पेज नंबर 29। आज की परिवर्तित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा घरानों के समर्थकों व कर्णधारों के अपने अपने घराने बनाए रखने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें घरानों की शिक्षा अपने परिवार या वंश तक सीमित रखना भी दुष्कर हो रहा है। वंश से बाहर के विद्यार्थियों में ऐसे विरले ही नज़र आते हैं जो पहले की तरह गुरु के घर में रहकर लगातार वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने और संगीत को ही जीविकापार्जन का साधन न बनाने के लिए तत्पर हों साधन बनाने के लिए तत्पर हों। वर्तमान कालीग युग में वर्तमानकालीन गुरु भी कलयुग में अपनी या अपने परिवार की और पेशेवरों के समान ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होने के की कामना करते हैं। केवल गुरु सेवा या गुरु भक्ति उनका पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः आज के घरानेदार गायक कलाकार को भी गुरु की परिवर्तित मांग और अभिरुचि के अनुसार अपने आप को ढालना होगा और अपना दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार बनाना होगा। आज भी गायन वादन व नृत्य के घराने हैं, उनके भी प्रतिभाशाली एवं कुशल कलाकार विद्यमान हैं और आज जनता भी उनका खूब मान सम्मान करती है। लेकिन आज की व्यवस्था में संगीत शिक्षण घरानों तक ही सीमित नहीं रही। आज संगीत को सभी श्रेणी के व्यक्ति सीखने के लिए उत्सुक एवं लालायित हैं। यह सुविधा उन्हें संगीत के प्रचार प्रसार के लिए प्रचालित संचालित संस्थाओं पर द्वारा सुलभ हो रही है। अंग्रेजों के शासन की स्थापना के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हुआ। फलतः विदेशी शासकों की शिक्षा नीति के कारण शिक्षा के सार ढांचे के पश्चात्तीकरण हुआ। मानवीय यानी ह्यूमैनिटीज एवं विज्ञान साइंस विषयों के समान ललित कलाओं फाइन आर्ट्स और संगीत की शिक्षा गुरुकुल पद्धति के स्थान पर स्कूलों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सामूहिक रीति से प्रारंभ हो गई, जिसके कारण उन जन सामान्य तक उसकी पहुंच सरल हो गई। संस्थागत शिक्षण आज एक प्रकार से युग की मांग बन गया है। संगीत के प्रत्येक जिज्ञासु के लिए देश की विभिन्न संस्थाओं में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, एकल गायन, वादन, वृंद वादन तथा आदि के प्रशिक्षण का प्रावधान हो गया है। इस प्रकार शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अब संगीत का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। संगीत विषय में अन्य विषयों के समान परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उपाधियों भी दी जाने लगी हैं। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों को उचित मात्रा में उपलब्ध कराना प्रवेश से लेकर परीक्षा पद्धति और योग्यता परीक्षण विधि में आज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन, संगीत को लोकप्रिय बनाना आदि सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक दोनों पक्षों के संबंध अनेक सामान्यताओं समस्याओं के समाधान के लिए सेमिनारों एवं संगोष्ठियों का आयोजन आदि पर पूरा ध्यान दिया जाने लगा है। पेज नंबर 30। विश्वविद्यालयों में सांगीतिक अनुसंधानों की व्यवस्था पूर्ण रूपेण उपलब्ध हो गई है। प्रशासन की ओर से भी पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण जैसी उच्च उपाधियां प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया जाने लगा है। संस्थाओं में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था होने से संगीत के विकास की कुछ नवीन दिशाओं पर भी विचार होना प्रारंभ हो गया है। संगीत के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण के कारण आज के कलाकारों की व्यक्तिगत शिक्षा या सामूहिक शिक्षण से अथवा इन दोनों के सम्मिश्रण से गायन वादन शैलियों में भी अंतर होने लगा है। वर्तमानकालीन कलाकार पुराने घरानेदार गायकी के अंधाधुन अंधानुकरण के स्थान पर स्वतंत्र रूप से गा बजा रहे हैं। फिल्मों में भी जो नए प्रयोग दिखाए जा रहे हैं उनसे शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत को भी नई दिशाएं मिल रही हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी दी जाने वाली संगीत की सामूहिक शिक्षा के लाभ से इसका उदय तो अवश्य हुआ है, किंतु समस्याएं भी सामने उभर कर आई हैं। आज संगीत शिक्षण से के सूक्ष्म और विशिष्ट अंगों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि निर्धारित पाठ्यक्रम की औपचारिकता को पूरा करने पर दिया जाता है। सर्वसुलभ प्रवेश होने के कारण विद्यार्थियों में गुणवत्ता होने की अपेक्षा की जाती है और संख्या की वृद्धि पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के निहित प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, सेवा भाव, एकाग्रता, साधना, लगन आदि समाप्त हो गई है। सामूहिक शिक्षा में विद्यार्थी के लिए अपने कल्प में व्यक्तिगत प्रतिभा का समावेश करने का अवसर भी कम हो गया है। उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण एवं उसकी एक रूपता, निष्पक्ष परीक्षा का होना भी अति आवश्यक है। और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे योग्य शिक्षकों का अभाव, सहायक वाद्य यंत्रों की कमी, शास्त्रीय पक्ष की शिक्षण में पाठ्यक्रमों के न्यूनता, घर में संगीताभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण की कमी आदि। शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षकों की भी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान भी खोजा जा सकता है। संगीत शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत के शिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर फिल्म संगीत, टेलीफिल्मों के लिए संगीत तैयार करना, सामूहिक गानों तथा समूह नृत्यों के लिए संगीत रचना करना, विभिन्न वाद्यों के लिए संगीत रचना करना, विभिन्न वाद्यों पर संगीत प्रदान करना आदि की शिक्षा भी दी जाने लग चाहिए, ताकि उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्हें आर्थिक परिस्थितियों से जूझना न पड़े। शिक्षाविदों के सामान्य शिक्षा की प्रविधियों तथा सिद्धांतों का निर्धारण संभवतः संगीत को ध्यान में रखकर नहीं किया। वर्तमान काल में अब जबकि संगीत को अन्य विषयों के समान ही मान्यता प्राप्त है, तो शिक्षण के आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि संगीत के सभी पक्षों के अध्ययन सामान्य शिक्षा की पद्धतियों तथा सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल में संगीत का प्रचार प्रसार वैदिक काल के संगीत प्रचार प्रसार से कम नहीं है। संगीतज्ञों को समाज में भी मान सम्मान प्रदान किया गया है। विषय की सुलभता है, किंतु फिर भी जनता की संगीत के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई पाश्चात्य सभ्यता की दुष्प्रभाव है और सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां इसके प्रति उत्तरदायी हैं।